पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में हम लोग विचार कर रहे हैं। पदार्थ का निरूपण हो रहा है। पदार्थ कौन सा पदार्थ? त्वम पदार्थ। हाँ, यहां पर जो भी विचार चलता है ना, करने के लिए चलता है। इसमें जो भी है सब जानने के लिए है। हाँ, पंचदशी ऐसी ग्रंथ ऐसी है, इसका विचार ऐसा है, इसलिए ध्यान में रखना है। इसलिए जो भी नहीं समझ में आता हो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा। तो पदार्थ का निरूपण हो रहा है तम पदार्थ, है ना? तम पदार्थ, अहम पदार्थ। तो कहते हैं अविद्या अवस्था में जिसको हम मैं समझ रहे हैं वो हो गया वाच्यार्थ, वो हो गया वाच्यार्थ, शब्द का वाच्यार्थ हो गया। लेकिन ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप अलग है, ये कह रहे हैं। तो वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है विवेक के द्वारा। तो विवेक के द्वारा पदार्थ का शोधन होगा, शोधन हो जाएगा। तो विवेक करना पड़ता है, मूंग में मिल गया है कंकण, है ना? इसलिए मूंग भी हरा दिखता है तो कंकण भी हरा दिखता है, तो विवेक नहीं हो पाता है, है ना? विवेक नहीं हो पाता है, इसलिए पहचानना पड़ेगा ना कि कंकण क्या है, मूंग क्या है। ऐसे नहीं कि मूंग को फेंक दो और कंकण कंकण को रखो, ऐसा तो नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर विवेक किया जा रहा है कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है। तो अनात्मा में जब अनात्मा बुद्धि कर देंगे तो आत्मा अवशिष्ट हो जाएगा, हो गया कि नहीं? ऐसा है, कंकण को निकाल दिया तो शेष क्या रहेगा? मूंग रहेगा। ठीक, इसी में अगर अनात्मा को निकाल दो, है ना? तो कहां से प्रारंभ करेंगे? प्रारंभ घटपटादि से, घटपटादि तो अनात्मा है ही, ये तो हो जाता है विवेक। लेकिन स्थूल शरीर भी अनात्मा है, हो गए कि नहीं? तो मन बुद्धि इंद्रियां भी अनात्मा है। तो जो अनात्मा है उसमें अनात्मा बुद्धि करेंगे तो निषेध हो गया, पकड़ में कि नहीं? जिसका आप निषेध नहीं कर सकते हैं, है, वो आत्मा होगा और क्या, उसको कहते हैं यहां पर कूटस्थ, ध्यान में रखना है। तो कूटस्थ अलग, जो लक्षार्थ है, वाच्यार्थ अलग। वाच्यार्थ है अंतकरण में प्रतिबिंबित चेतन, मतलब चिदाभास, है ना? हाँ, अच्छा। तो दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। तो जो कूटस्थ ब्रह्म है वो अज्ञात घट को प्रकाशित किया। किस घट को किया? अज्ञात घट को। तो अनुभव कैसा होगा? घटम अहम न जाना मे, घटम अहम न जाना मे। तो किसको जान रहे हैं? अज्ञान, अज्ञान का ज्ञान हो रहा है। केवल अज्ञान नहीं है, अज्ञान विशिष्ट घट का ज्ञान हो रहा है। किसका अज्ञान? घट का। हाँ, इसलिए अज्ञान का विषय जो घट है उसको कहेंगे अज्ञात घट। अज्ञात घट को आप जान रहे हो, आगे समझ में? तो कौन जान रहा है? वाच्यार्थ जान रहा है कि लक्षार्थ जान रहा है? समझ में? नहीं, ये गड़बड़ी है। जानते, जानता तो कूटस्थ ही है, है ना? लेकिन वहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच रही है, है ना? हाँ, लेकिन लगता है कि चिदाभास जानता। चिदाभास काहे को जानेगा? चिदावास देखता नहीं है। चिदावास तो तब होगा भाई दर्पण में प्रतिबिंब तब होगा जब दर्पण हो, तो दर्पण हो तो क्या होगा प्रतिबिंब आ गया। तो इसलिए जीव तब होगा जब अंतकरण हो, तो मतलब अंतकरण की वृत्ति हो, तो और अंतकरण की वृत्ति ही नहीं हो रही है घट को जिस समय अब नहीं जानता हूं कहते हैं। घट के साथ चक्षु का संबंध नहीं है इसलिए घटाकार वृत्ति नहीं है, नहीं इसलिए चिदाभास में नहीं है। लेकिन ज्ञान तो हो रहा है घटम अहम न जाना में, इसलिए कूटस्थ चेतन से हो रहा है, ये हो गया। फिर जब चक्षु का संबंध घट के साथ बनेगा तो घटाकार वृत्ति होगी, घटाकार वृत्ति कहां पर होगी, बाहर होगी कि अंदर होगी, अंदर होगी, समझ में आया ना। हाँ वृत्ति तो अंदर ही होती है, तो वृत्ति जब अंदर होगी तो क्या हो जाता है, तो अंतकरण के साथ संबंध हो गया, अंतकरण के साथ संबंध हो गया आगे ना। तो संबंध हो गया तो आप कूटस्थ नहीं रहे, फिर है कूटस्थ, कूटस्थ का भान नहीं होता है। हाँ, आप अपने को क्या बोलोगे, जीव बोलोगे, फिर आगे समझे ना, जीवपना आ गई। अभी अंतकरण के साथ मिल गए तो जीवपना आ गई, आगे समझ में ना। तो देखो जीवपना किसको लेकर के, अंतकरण को लेकर के अथवा अंतकरण वृत्ति को लेकर के। हाँ इसको बुद्धि में ठीक ठीक से बैठाते बैठाते आगे चलो, तो आप क्या हो गए, कूटस्थ से जीव भाव में आ गए। कूटस्थ भाव से पहले कैसा था, कूटस्थ भाव था, क्या होने से पहले, वृत्ति होने से पहले आप कैसे थे। हाँ अब वृत्ति हो गई तो आप क्या बन गए, जीव बन गए, जीव बन गए, जागृत में सब विचार हो रहा है। तो आप जीव बन गए भाई, है ना, घटाकार वृत्ति को लेकर के। तो घटाकार वृत्ति चली जाएगी कहां पर, घट में, घट में वृत्ति ना। जैसे देखो हाँ, कोई घड़ा हो अथवा दीवार हो, है ना, दीवार में तो प्रतिबिंब नहीं दिखता है, इस बार घट में प्रतिबिंब नहीं दिखता है, लेकिन घड़े के ऊपर कुछ लगा दो, पॉलिश लगा दो, पॉलिश लगा दो, तो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ठीक। इसी प्रकार घट में यदि कोई वृत्ति ना हो तो प्रतिबिंब दिखेगा, उसमें चिदाभास होगा नहीं होगा ना भाई। भाई जहां पर प्रतिबिंब पड़ेगा तब ना चिदाभास होगा, इसलिए घट में यदि वृत्ति न जावे घट देश तक, तो फिर घट में चिदाभास नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बराबर ना। तब जब अंतकरण की वृत्ति चली गई चक्षु के द्वारा तो घट देश में, तो घट में वृत्ति का संबंध हो गया, आए समझ में ना, क्या हो गया, वृत्ति का संबंध हो गया। इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, मतलब वृत्ति का संबंध होना घट के साथ। तो वृत्ति का संबंध हो गया तो वृत्ति तो स्वच्छ है ही, इसलिए वृत्ति में चेतन का आभास पड़ा है, कहां पर, यहां पर, पहले तो यहां पर पड़ेगा ना। तो वृत्ति गई घट देश में तो वृत्ति में चिदाभास भी हुआ, इसलिए घट के साथ चिदाभास का भी संबंध हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, वृत्ति का संबंध होने से चिदाभास का भी संबंध हो गया, हो गया ना। इसलिए वो चिदाभास के द्वारा घट का स्फुरण होगा, कैसा, घड़ा है बस इतना है। तो जाना किसने, चिदाभास ने जाना, आपने जाना, चिदाभास ने, जीव ने जाना, आ गया। अब भाई देखो उसके बाद भान होता है घट का ज्ञान तुमको हुआ, तो बोले हाँ घट का ज्ञान मुझे हुआ। तो अभी जो प्रकाश हो रहा है ये किससे हो रहा है, कूटस्थ। अब ये देखो चिदाभास से नहीं हो रहा है, चिदाभास तो केवल घट को प्रकाश किया, घड़ा है, लेकिन अभी भान हो रहा है कूटस्थ से। लेकिन वहां तक कूटस्थ में बुद्धि नहीं जा रही है ना, जीव में ही बुद्धि रह गई, अंतकरण में घिरा हुआ जो चिदाभास है ना उसको हम मैं समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रकाश हो रहा है अपना स्वरूप से हो रहा है, अपना चिदाभास का स्वरूप क्या है, कूटस्थ, उस कूटस्थ चेतन से प्रकाश हुआ ज्ञात घट का, मतलब जाना हुआ घट का प्रकाश हुआ, मतलब घट ज्ञान का प्रकाश हुआ, घट ज्ञान प्रवृत्ति का हुआ है ना। लेकिन जीव भाव के कारण वो कूटस्थ का भान अपने को नहीं हो पाता है, समझ में ना। दसम श्लोक में बता दिया, उसको कहते हैं फल। घट में जो ज्ञातता धर्म हुआ ना, उसका नाम क्या है? देखो लिख दिया, चिदाभास फलोदय ज्ञातत्व नाम। दसवां श्लोक में हुआ कि नहीं? तो चिदाभास फल किसको बोलते हैं? चिदाभास फल चेतन बोलते हैं ना, वो चिदाभास। तो चिदाभास पहले कहां पर था? अंतकरण में था कि नहीं? अब वृत्ति चले गई तो चिदाभास भी चला गया घट देश के साथ, है ना। इसलिए चिदाभास जो फल है उसका भी हाँ उत्पन्न कहां पर हो गया? घट में हो गया। तो चिदाभास रूपे जो फल है ना, हाँ, वो घट देश में प्रकट होना उसको कहते हैं ज्ञातता, उसको कहते हैं ज्ञातता। तो फल किसका नाम हुआ? चिदाभास को फल कहते हैं, चिदाभास को फल। कूटस्थ ब्रह्म चेतन को फल नहीं बोले। फल का उदय होना, हाँ वो ज्ञातता है, ठीक है। कूटस्थ ब्रह्म चेतन को फल नहीं बोलते, यहां समझ में आया। इसी बात को परिपुष्ट करने के लिए एक शंका उठाया 11वां श्लोक में, भई सुरेश्वराचार्य, उसने कहा है वार्तिक में बृहदारण्यक के ऊपर वार्तिक लिखा है, कल बताया ना लोगों के, और तैतरीय उपनिषद के ऊपर दो उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखा है। एक है भगवान भाष्यकार की शाखा, तैतरीय शाखा तैतरीय उपनिषद, और उनकी निजी शाखा क्या है? काणव शाखा। बृहदारण्यक उपनिषद काणव शाखा, तैतरीय उपनिषद तैतरीय शाखा, दो शाखा के ऊपर सुरेश्वराचार्य ने वार्तिक लिखा है। उस वार्तिक में ये बात कही गई 11वां श्लोक में, है ना। देखो उसमें कहा है कि देखो श्लोक में आया, पराग अर्थ प्रमेयेषु फलत्वेन सम्मता या संवित। पराग अर्थ कौन है? बाह्य पदार्थ। पराचक कामान अभी सुन रहे थे ना, पराचक कामान बाह्य पदार्थ जो कहते हैं पराग, मतलब अनात्मा। अनात्मा हो गया पराग, हो गया कि नहीं? तो वो कैसा है? प्रमेय। वो कैसा है? प्रमेय। प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय हो गया प्रमेय, समझ में कि नहीं? घटपट आदि कैसे है? प्रमेय, यथार्थ ज्ञान का विषय। उसमें जो संबित या संबित, संवेद मतलब ज्ञान, ब्रह्म रूपी ज्ञान, पीछे बताया था संवित, प्रथम प्रकरण में ही संवित बताया था। हाँ, जो स्वरूप बोध ज्ञान है ना, उसको संवित कहा जाता है। हाँ ऐसा है। तो यम आत्मा पर आनंद पर प्रेमास पदम यत, वो जो संवित है उसको आत्मा बोला, स्वरूप आत्मा। वो जो संबित कुटस्थ ज्ञान स्वरूप जो प्रमेय पदार्थ में है उसको बोल दिया वार्तिक कार ने फल। क्या बोल दिया? कुटस्थ चेतन को फल बोल दिया है वार्तिक में। तो ये बात बोलते हैं, यह मेयो अर्थ वेदांतोक्ति प्रमाणतः। वो हो गया मेय पदार्थ, मेय क्या है? ज्ञान का विषय है ना। तो वेदांत जो उक्ति है, उक्ति वाला वाक्य बाध्य, वेदांत वाक्य प्रमाण है, वेदांत वाक्य प्रमाण है, ऐसे समझ में। हाँ, इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण, ये समझ लो। प्रमाण दो प्रकार समझ लो, ऐसे तो मिलाकर के छह प्रमाण मानते हो वेदांत में, नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, है ना। उपमिति शब्द हो गए, है ना। तो ये छह हो गए, उसको दो विभाग कर लो, उसको दो विभाग कर लो। एक जो है स्वतः प्रमाण, एक होता है परतः प्रमाण, एक स्वतः प्रमाण, एक परतः प्रमाण। परतः प्रमाण क्या है? जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, ये सब क्या है? परतः प्रमाण। और क्या भाई, समझ लो तुमको संसार का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो संसार का ज्ञान यथार्थ है कैसे पता लगेगा? हमारा ज्ञान सही हुआ कि नहीं हुआ तो कैसे पता लगेगा, है ना भाई? चक्षु से जो दिख रही है पुस्तक, ये वास्तविक है कि नहीं, ये नहीं पता लग सकता। दिखने मात्र, चक्षु आदि दिखने मात्र से प्रमाण है नहीं बोल सकते, है ना? इसलिए ये रजनीश से कहा गया, रजनीश ने कहा कि भाई हमारा अनुभव है ये सब। भाई उनको कहा गया, एक स्वामी जी बोले, वो जो है वहां पर हरिद्वार में भागवतानंद जी महाराज, तो उसने कहा कि तुम्हारा अनुभव सही है, इसमें क्या प्रमाण है? भाई किसी को सर्प दिखता है, किसी को माला दिखते है, सबका अनुभव है कि नहीं? तो अनुभव होने मात्र से प्रमाण कैसे कहोगे? नहीं कह सकते, ऐसा समझ में ना ये बात होती है। इसलिए कोई अनुमान करेगा कि ईश्वर है, अनुमान कर लोगे तो तुम्हारा अनुमान सही है तो कैसे पता लगेगा? हाँ, शास्त्र को लेकर के तो तुम प्रमाण कर सकते हो, स्वर्ग है तो कैसे पता लगेगा? अनुमान से नहीं लगेगा, शास्त्र से होगा। पहले तुम शास्त्र को मानोगे तब तो प्रमाण कर सकते हो, बिना शास्त्र को माने बिना प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए बाकी जितने भी प्रमाण में जो प्रामाण्य है ना, वो परत हो गया, उसका मूल शास्त्र हो गया, ऐसे समझ में ना। इसलिए कुमारिल भट्ट ने कहा जितने भी वेद विरुद्ध है उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। विरोध है तो अनपेक्षम सत, असत्य ही अनुमानम। विरोध है तो अनपेक्षम सत, शास्त्र से मतलब श्रुति से जिसका कथन विरुद्ध हो जाएगा उसका वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता, चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, है ना? और यदि विरुद्ध ना हो तो उसको प्रमाण कहा जाएगा, क्यों? श्रुति सम्मत होने से। बात पकड़ में आई? इसलिए गीता वाक्यम प्रमाणम, गीता वाक्य प्रमाण है। क्यों भाई? भगवान ने कहा इसलिए क्या? नहीं, श्रुति मूलकत्व, श्रुति जो है ना उपनिषद, ये सर्व उपनिषदों का वो कहा गया, इसलिए मूल उसका उपनिषद हो गया, है ना? इसलिए लेकिन जो वेद जो बोल रहा है उसके प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, वेद ही स्वतः प्रमाण है। इसलिए वेद वाक्य जो बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बालक हो, है ना, चाहे फक्कड़ महात्मा हो, कोई भी हो, उसका वाक्य प्रमाण हो जाएगा। इसलिए दो प्रमाण है, एक स्वतः प्रमाण और एक परतः प्रमाण होता है, ऐसा समझे ना? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना, है ना? अच्छा, उसको भी दो प्रकार समझ लो। तो वेद में केवल परमात्मा का कथन तो नहीं ना, स्वर्ग आदि का भी कथन है, ब्रह्मलोक का भी कथन है, उपासना का भी कथन है ना? इसलिए उसको भी दो भेद कर लो, एक होता है तत्वावेदक प्रमाण, एक होता है अतत्वावेदक प्रमाण, है ना? पुस्तक दिख रही है, सर्प को सर्प आप समझ रहे हो तो सर्प सत्य है, है ना? सर्प को सत्य तो कहोगे, सर्प को सत्य, सर्प को सर्प समझ रहे हो तो सत्य है कि नहीं, है ना? लेकिन रस्सी को सर्प कह रहे हो वो सत्य नहीं है, ऐसा समझ में ना? लेकिन सर्प को जो सर्प समझ रहे हो उसको जो सत्य कह रहे हो, लेकिन कौन सा सत्य है? व्यवहारिक सत्य। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक तो सत्य है ही, सत्य जैसा मालूम पड़ रहा है, हाँ? उसको कहते हैं अतत्व, व्यवहारिक सत्य को कहेंगे अतत्व। तो व्यवहारिक सत्य को प्रतिपादन करने वाला प्रमाण यह हो जाएगा अतत्वावेदक प्रमाण, हो गया कि नहीं? इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह ये सब कौन से है? अतत्वावेदक प्रमाण मतलब संसार का कथन करेंगे, संसार का ज्ञान कराएंगे, हो गया ना भाई। लेकिन वेदांत जो है वो ब्रह्म का ज्ञान करेगा, पारमार्थिक ब्रह्म का ज्ञान करेगा, इसलिए उसको कहते हैं तत्वावेदक प्रमाण। ये तत्वावेदक प्रमाण कौन हुआ? केवल वेदांत हुआ, उसको तत्वावेदक प्रमाण कहेंगे। जहां पर कर्म भी है कथन, उपासना भी है, ये तो वेद में है ना, उसके भी तत्वावेदक नहीं कहा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अतत्वावेदक प्रमाण कहेंगे, ये समझ लो। इसलिए वेदांत उक्ति प्रमाण कहने से तत्वावेदक हो गया, वेदांत वाक्य रूपी प्रमाण से ये कहा गया मेयो अर्थ। मेय कौन हो गया? संबित ब्रह्म रूपी ज्ञान है ना, उसको भी वार्तिककार ने फल बोल दिया। लेकिन तुम तो भारती तीर्थ महाराज, आप बोलते हो चिदाभास को फल है, भाई तुम्हारा कथन को मानेंगे कि सुरेश्वर आचार्य का कथन को मानेंगे? ये तात्पर्य है शंका पक्षी का कहना, ठीक है थोड़ी सी देख लो। अस्य च अयम अर्थ, ठीक है मैं परागर्था मतलब बाह्या, परागर्थ कौन है? बाह्य, किसके बाहर? किसके बाहर भाई? घटा दी है हाँ आत्मा का कोई बाहर, आत्मा का कोई अंदर तो होता नहीं है, है ना। ये चित्र पर्दे से बाहर है, पर्दे में चित्र दिखता है तो पर्दे से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसमें अगर आत्मा रूपी पर्दे में चित्र सारा है तो बाहर कैसे होगा? लेकिन शरीर को मैं मान लिया तो बाहर हो गए, शरीर को मैं मान लिया तो बाहर हो गए ना, इसलिए ये तात्पर्य कह रहे हैं। इसलिए अनात्मा शब्द से ये परागर्थ से अनात्मा को ले लीजिए, परागर्थ बाह्य घटादय पदार्थ तेषु प्रमेयेषु प्रमाण विशेषु सत्सु है ना, वो हो गए प्रमाय प्रमेय। प्रमेय कौन हो गए? घटपटादि है ना, मतलब क्या? प्रमाण विषय, प्रमाण हो गया ज्ञान, चक्षुरादि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, ये हो गया प्रमाण, समझ में ना। उसका विषय हो गया घटपटादि, उसका विषय हो जाएगा घटपटादि। सत्सु या प्रमाण फलत्वेन अभ्युपेता, जो प्रमाण का फल के रूप से स्वीकार किया गया, अभिपल स्वीकार किया गया, वो हो गया संबित, वो हो गया संबित, वो ज्ञान हो गया, अस्ति ज्ञान तो है ही। सा एव इह अस्मिन् वेदांत शास्त्रे, इह का अर्थ ये जो वेदांत शास्त्र है, वेदांत शास्त्र कैसा है? वेदांत उक्ति प्रमाणतः, वेदांत में जो उक्ति, उक्ति मतलब वाक्य, वाक्य हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब वाक्य ले लीजिए, वो हो गया प्रमाण। इसे आगे लिखते हैं देखो, वेदांत वाक्य, उक्ति का अर्थ वाक्य, तो वेदांत वाक्य रूपी जो प्रमाण, लक्षण स्वरूप, वेदांत वाक्य रूपी जो प्रमाण हुआ, समझ में ना, उस प्रमाण के द्वारा जो अर्थ हुआ मेय है ना, जो ज्ञातव्य है, तो वेदांत वाक्य के द्वारा ज्ञातव्य कौन है? ब्रह्म है कि नहीं? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मितमश्नुते, उसको ज्ञेय कहा गया कि नहीं? उसको ज्ञेय कहा, किसको? परमात्मा को, परमात्मा को वेदांत वाक्य के द्वारा ज्ञेय कहा गया है ऐसा है। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म कौन है? निर्विशेष ब्रह्म। ध्येय ब्रह्म कौन है? ध्येय, हाँ सबसे ध्येय है, मेय हो गया ज्ञेय, एक ही बात हो गई है ना। तो ज्ञेय ब्रह्म कौन है? निर्विशेष। ध्येय ब्रह्म कौन है? सबसे, तो उसके दो स्वरूप हो गए ब्रह्म के, एक निर्विशेष स्वरूप, दूसरा हो गया सविशेष स्वरूप। तो निर्विशेष स्वरूप काय के लिए? ज्ञेय, उसको ज्ञेय रूप से समझना है, आत्मरूप से समझना है। आगे समझ में ना? हाँ, इसका बड़ा रहस्य है, समझ करके रखो। ध्येय ब्रह्म क्या है? चिंतन का विषय, उपासना का विषय होगा, वो हो गया सविशेष, उसको उपास्य ब्रह्म कहेंगे अथवा ध्येय ब्रह्म कहेंगे। वो काहे के लिए है भाई? है ना, उपासना के लिए। ध्येय ब्रह्म का स्वरूप उपासना के लिए, और निर्विषय ब्रह्म का स्वरूप स्वरूप से जानने के लिए, ज्ञेय रूप से हो गया। समझ में ना? ऐसा है। इसे निर्विषय जो ब्रह्म होता है, ज्ञेय ब्रह्म, है ना, वो ना नाम का विषय है ना रूप का, ना वो नाम है ना रूप। बड़ा कठिन काम है कि नहीं? इसलिए अशब्द गोचरस्यापि तस्य वे ब्रह्मणो द्विजः, है ना, पूजायाम, है जो है पूजायाम, है ना, पूजा के लिए, पूजा के लिए किसके लिए है? हाँ, पूजायाम भगवत शब्द क्रियते हूपचारत, पूजायाम भगवत शब्द, पूजा के लिए भी उसका कह दिया भगवान एक नाम है, क्या है? पूजा के लिए, उपासना के लिए उसको बोल दिया कृष्ण, उसको बोल दिया शिव और काई के लिए। लेकिन वास्तविक ज्ञ ब्रह्म किसी शब्द का विषय नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? धीरे धीरे आप लोगों को जो है समझ में आएगा, है ना, ऐसा है। इसलिए वेदांत के द्वारा जो ब्रह्माकारा वृत्ति होगी ना, उस ब्रह्माकारा वृत्ति से भी ब्रह्म प्रकाशित थोड़ी होता है। ब्रह्माकारा वृत्ति क्या करेगी? केवल अविद्या को हटाएगी, उससे ब्रह्म प्रकाशित थोड़ी होगा, नहीं होता है। तो ब्रह्माकारा वृत्ति भी जड़ है, तो ब्रह्माकारा वृत्ति जैसे देखो, एक संकल्प हो गया मन में तो जड़ से जाना जाते कि नहीं? अंतकरण में एक संकल्प हो गया, चाहे रागात्मक हो चाहे द्वेषात्मक, संकल्प होने मात्र से झट से जाना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकारा वृत्ति हुई तो वो भी झट से जानी जाएगी, हो गया कि नहीं? वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी, तो वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होना ही ब्रह्माकार वृत्ति का विषय बनना ब्रह्म, ये ध्यान में रखना। तो वही समझ लो, वेदांत वाक्य लक्षण प्रमाणेन मेयो अर्थो ज्ञातव्यो अर्थः। अच्छा, तो ये तो वार्तिककार का कहना है भी, दोनों में अंतर समझ में आया ना? हाँ। तो भारती तीर्थ ने कहा कि चिदाभास जो है फल, पकड़ में आएगी नहीं? और सुरेश्वर आचार्य ने कहा कि जो कूटस्थ ब्रह्म वो फल है। पहले दोनों का कथन में तो एकदम अंतर हो गया, अंतर हो गया कि नहीं? इसीलिए जो है ना, इसलिए महापुरुष के पास जाकर के विद्या अध्ययन करना पड़ता है ना, नहीं तो संशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और क्या, इसलिए वेदांताना मनेकत्व संशयानाम बहुत्वता है ना, इसलिए महापुरुष के पास जा करके वो भी अभिमान छोड़ करके परीक्षा करने के लिए नहीं तो महापुरुष के पास जा करके निर अभिमान होकर के यदि हम श्रवण करेंगे तो विद्या की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसा होता है, नहीं तो संशय हो जाएगा ना, ऐसा है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य को दिखाते, कहते हैं दोनों में कोई विरोध नहीं है। भारती तीर्थ जी महाराज बोलते हैं कोई विरोध नहीं है दोनों में। देखो 12 नंबर श्लोक में, इति वार्तिक कारेण, इति वार्तिक कारेण चित सादृश्यं विवक्षितम्, चित सादृश्यं विवक्षितम् ब्रह्मचित फलयोर्भेदः, ब्रह्मचित फलयोर्भेदः साहस्र्यं विश्रुतो यतः। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या पाठ है आपके ग्रंथ में? साहस्रियम ऐसा करना है। हाँ, जिसके पास सौ हो ना उसको सा साहस्रियम ऐसा पाठ है क्या जी? कहाँ पर? मैं निकाल लेता ऊपर वो है ना, उसको सा करिए, आगे र है, मैं बता रहा हूं आपको ना, सा पहले सा ह, उसके बाद श्रियाम करो, सकार रकार आगे या, ऐसा है, सकार आधा रकार भी आधा रहेगा, आगे या, फिर आगे अनुसार ऊपर है, ठीक है ना भाई? तो क्या उच्चारण होगा देखो, हाँ, साहस्रम विश्रुतो यतः, है ना? आप लोग देखो भाई, बोलते हैं इति वार्तिक कारेण, वार्तिककार हो गए सुरेश्वराचार्य, उस वार्तिककार के द्वारा ये विवक्षित है। वार्तिककार ये कहना चाहते हैं, वार्तिककार भाई कोई भी आचार्य हो, हाँ, वो ज्ञान किसका कराना चाहते हैं? चिदाभास का ज्ञान कराना चाहते हैं, कुटस्थ ब्रह्म का ज्ञान कराना चाहते हैं? चिदाभास को तो सब जानते ही है, ज्ञान कराना है कुटस्थ ब्रह्म का, है ना? ये कह रहे हैं देखो, वार्तिक का कारण चित सादृश्यम विवक्षितम, ध्यान में रखना है। तो घर देश में गया चिदाभास, क्या गया घर देश में गया? चिदाभास, चिदाभास तो प्रतिबिंब हो गया, क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, हाँ, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, हाँ? तो पूछा भाई ये कौन है, पहले दृष्टांत को समझो तो अभी बात पकड़ में आएगी। दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, हाँ? आप सामने खड़े हो, आप सामने खड़े हो, हाँ? तो पूछा कि भाई ये कौन है, ऐसे पूछा, तो ये मैं हूं, तो आप वही हो क्या? तो क्या तात्पर्य इसका? मेरे सदृश ये है, मेरे सदृश ये है, अथवा फोटो रखा है, टांग दिया है, फोटो टांग दिया है दीवार पर, है कि नहीं? तो बोल दिया भी बहुत, उसमें ग्रुप फोटो है, मान लीजिए इनमें से जो है ना बीच वाला कौन है, हाँ, ये बोल रहे देवदत्त है, ये कौन है? देवदत्त भाई, वो देवदत्त है क्या? देवदत्त जैसा हो गया ना, सदृश, इसको कहते हैं सदृश। इसी प्रकार जो है, जैसे और एक दृष्टांत प्रसिद्ध है, बालक को कह दिया शेर, सिंह बोल दिया, तो बालक सिंह है क्या? तो ये सिंह कहने से क्या तात्पर्य हुआ? सिंह के सदृश, आए समझ में कि नहीं? ठीक इसी प्रकार जो प्रतिबिंब चिदाभास है, कहां पर? घट में है, चिदाभास घट में है कि नहीं? हाँ, तो वो चिदाभास किसके सदृश हो गया? कुटस्था ब्रह्म के सदृश हो गया, क्योंकि ये भी चेतन है और ये चेतन न होने पर भी चेतन की तरह है ये, तो चेतन की तरह को चेतन बोल दिया, है समझ में? चिदाभास तो चेतन है ही प्रतिबिंब, है ना? तो लेकिन वो वास्तविक चेतन नहीं है, वास्तविक चेतन कौन है? कुटस्थ ब्रह्म, इसलिए चिदाभास को भी कुटस्थ ब्रह्म कह दिया, तात्पर्य ये हो गया कि कुटस्थ ब्रह्म के सदृश चिदाभास है, ये तात्पर्य है ना? ये कह रहा देखो, चित सादृश्यम विवक्षितम, उचित सादृश्य है, ये ऐसी विवक्षा है वार्तिक कार की, ऐसा है। तो वास्तविक कुटस्थ ब्रह्म फल नहीं हुआ, फिर कुटस्थ ब्रह्म फल नहीं, फल तो चिदाभास है। यदि कुटस्थ ब्रह्म को यदि फल कहोगे तो भगवान भाष्यकार का जो कथन है उसके साथ तो भी विरोध पड़ जाएगा, है ना? इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका आधार कौन है? भगवान भाष्यकार का भाष्य। इसलिए तो अभी प्रवचन में कह रहा था इसलिए भगवान भाष्यकार यदि उनका यदि अवतार न हुआ होता, भगवान शंकर का शंकराचार्य के रूप से यदि अवतार न हुआ होता तो वेदांत का वास्तविक तात्पर्य ज्ञान हम लोगों को नहीं हो पाता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो है लोग भूल जाते हैं उसको। किसको भूल जाते हैं? शंकराचार्य भगवान को भूल जाते हैं। बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है उपदेश सहस्री। उपदेश सहस्री है ना। हाँ हाँ, उसमें ये भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है, ये बोलते हैं यतमल क्योंकि, यतमल क्योंकि सहस्रियम मतलब उपदेश सहस्री नामक ग्रंथ में है ना, ब्रह्म चित फलयोर भेद विश्वत, ब्रह्म चेतन और फल चेतन दोनों में भेद है ऐसा स्पष्ट करके कहा गया है, ऐसा स्पष्ट सुना गया है उपदेश नामक शास्त्रीय ग्रंथ में। इसलिए कि दोनों क्या हो गया, अलग अलग है। कूटस्थ ब्रह्म निर्विकार है, हो गया कि नहीं, और चिदाभास निर्विकार नहीं है, समझ में ना, ये कह दिया। टीका थोड़ी सी देख लो। इति अनेना वार्तिकेन, ये जो वार्तिक है पूर्व श्लोक में क्या हुआ, वार्तिक ग्यारहवा श्लोक में वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा ये तात्पर्य है, ब्रह्म चैतन्य सदृश चिदाभास। ये देखो चिदाभास जो है ना ब्रह्म चैतन्य के सदृश है, दोनों में सादृश्य क्या है, चैतन्य सादृश्य हो गया, प्रकाश हो गया सादृश्य, इन्हें समानता है। जैसे बालक और सिंह में क्या समानता है, पराक्रमत्व शौर्य, ये सादृश्य होता है। ठीक इसी प्रकार है ना, ये कूटस्थ ब्रह्म ये भी चेतन है, अचिदाभास ये भी चेतन है, ऐसा है। तो कह दिया प्रमाण फलत्वेन विवक्षितः, इसलिए प्रमाण, प्रमाण कौन हो गया, प्रमाण कौन है यहाँ पर, अरे वे चिदाभास को किसने उत्पन्न किया, नहीं पकड़ माई चिदाभास को किसने, भाई दर्पण में प्रतिमा को किसने उत्पन्न, दर्पण उत्पन्न किया और कौन किया, हाँ वृत्ति। इसी प्रकार चिदाभास को किसने उत्पन्न किया, वृत्ति, हाँ घटाकार पटाकार वृत्ति है ना, तो घटाकार वृत्ति होता तो चिदाभास पड़ेगा ना वृत्ति में, हो गया कि नहीं, ऐसा है। इसलिए जब तक वृत्ति है तब तक चिदाभास है, हो गया कि नहीं, इसी प्रकार जब तक अहंकारा वृत्ति है मैं करके तब तक आप जीव हो ना आया कि नहीं आया, हाँ जब तक अहंकारा वृत्ति है तब तक उसके साथ आपका संबंध बनेगा ना, तब तक आप तो जीव हो गए। इसलिए तुम कौन हो, तो बोल दिया भाई मुझे नहीं जानते हो आप, मैं तो अमुक हूँ है ना, अहम महात्मा, अहम विद्वान, ये बोलता है। तो आत्मा विद्वान है क्या तो मैं जो बोलते हो ना, ये अहंकारा वृत्ति के साथ तादात्म्य करके मैं बोलते हो, अरे समझ में, ये हो गया चिदाभास, ये हो गया चिदाभास, हो गया कि नहीं, ऐसा है। इसलिए प्रथम अंकुर कौन हो गया संसार का, प्रथम अंकुर कौन हो गया संसार का, अहंकारा वृत्ति, इसको हाँ बुद्धि में धारण करना। तो अविद्या के कारण एक प्रथम अंकुर हो गया, प्रथम अंकुर कौन है संसार का, अहंकारा वृत्ति, अब पैदा करने वाली कौन है, अविद्या, हाँ अविद्या के कारण एक अहंकारा वृत्ति रूपी अंकुर हो गया भाई, जहां पर एक अंकुर हो गया तो सब पे शाखा है, पत्र है, पुष्प है, सब हो जाएंगे। इसलिए अहम अहम इस प्रकार वृत्ति न हो तो क्या संसार होगा, बोलो, कोई संसार नहीं है। इसी प्रकार आप जाते हो सुषुप्ति में तो अहंकारा वृत्ति नहीं है, अहंकारा वृत्ति नहीं है तो आप जीव है क्या उस समय, नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसलिए वहां पर जो अहम है इसको ठीक से समझना, सुषुप्ति में जो अहम है ना, बिना अहंकारा वृत्ति के साथ, बिना अहंकारा वृत्ति के बिना वो है। सुषुप्ति में जो अहम है ना, अहंकारा वृत्ति के बिना अहम है, वो शुद्ध हो गया, कूटस्थ हो गया। तो वही प्रकाशित करता है अविद्या को वहां पर। इसलिए उड़ने के बाद बोलता है मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जाना। तो जाना कि नहीं जाना आपने, कुछ जाना ना, तो किसको जाना, नहीं जाना को जाना। तो नहीं जाना को जाना, जीव न जाना कि कूटस्थ न जाना था, आए समझ में ना। लेकिन उड़ने के बाद ये उस बात को भूल जाता है, हा? मेरा स्वरूप जो कूटस्थ था ना, मतलब अहंकारा वृत्ति के बिना जो मैं था, है ना, वही प्रकाशित किया था, है ना, नहीं जाना को, मतलब अविद्या को, है कि नहीं भैया। तो उस स्वरूप को जो भूल जाता है, क्यों भूल जाता है, फिर अंकुर हो गया ना, उड़ने के बाद क्या हो गया, फिर अंकुर हो गया। कौन सा अंकुर हो गया, अहंकार वृत्ति आ गई, तो अहंकार वृत्ति में फिर तादात्म्य कर लिया, गांठ हो, गांठ लग गई। ये तो गांठ है ना, इसको कहते हैं ज्ञान गांठ है। तो उस जो है कूटस्थ भाव को भूल जाता है, अभी भी कूटस्थ भाव है, अभी भी जैसे सुषुप्ति में कूटस्थ भाव है ना, इसी प्रकार जागरण स्वप्न में भी कूटस्थ भाव है, वो तो जाएगा नहीं कभी, लेकिन अनुभूति नहीं होती है, इसलिए कि अहंकार वृत्ति में तादात्म्य करके बोल रहा है मैं, है ना। इसलिए ढूंढना है, लेकिन वहां पर कूटस्थ भाव रहने पर भी सुषुप्ति में आप जान नहीं सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर भी अज्ञान है ना, इसलिए आप जान नहीं सकते मेरा स्वरूप कूटस्थ है, मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं, ये भान नहीं होता है। हाँ, इसलिए जागृत में जो हो रहा है चिताभास है ना, इसके द्वारा कूटस्थ को पकड़ना है। हाँ, इसके द्वारा उसको पकड़ना है। जैसे पर्दे में चित्र दिख रहा है, ये ऐसा पर्दा है कि कभी चित्र ही नहीं जाता है, तो ज्ञान करना है चित्र का कि पर्दे का, हाँ, लेकिन किसके द्वारा ज्ञान करना है, हाँ, चित्र जिसमें देख रहा है वो पर्दा है, बड़ा कठिन काम है कि नहीं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि देखो ये जो है प्रकाश दिख रहा है भैया, हाँ, तो प्रकाश दिख रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, हाँ, तार चाहिए, है ना, बल्ब चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं। तो इसमें विद्युत कौन है, तार विद्युत है नहीं है ना, तो बल विद्युत है, प्रकाश विद्युत है नहीं है, तो कैसे जानोगे, हाँ, तो इसके द्वारा उसको जानना है, है कि नहीं। प्रकाश विद्युत नहीं है, तार भी विद्युत नहीं है, बल विद्युत नहीं है, हाँ, इसके द्वारा ही विद्युत को जानना है, साथे साथ जानना है, हाँ, इसमें विद्युत की बुद्धि न करके उसमें विद्युत बुद्धि करनी है। ठीक, इसी प्रकार यहां पर भी समझना है, है ना, जिस कूटस्थ से ये भास रहा है, समझ में ना, घट भी भास रहा है, घट का ज्ञान भी भास रहा है, और मैं करके चिदाभास भास रहा है, वो है कूटस्थ चेतन, वो मेरा, इसलिए लक्षित कहते हैं, इसलिए तो बोल दिया ना, लक्षार्थ वो, हाँ, वो वाचार्थ नहीं होगा, वहां तक बुद्धि नहीं जाएगी, वहां पर बुद्धि कूटस्थ तक नहीं जाएगी, है ना, इसलिए बुद्धि जिस चेतन से भास रही वो है कूटस्थ, तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, है ना, ये है। यहां एक पंक्ति ले लें ना, टाइम तो हो गया, एक पंक्ति ले लें हम टीका में, तो बार, हाँ, ये तो हो गया, वार्तिकेना ब्रह्म चैतन्य सदृश चिदाभास प्रमाण फलत्वेन विवक्षितः न ब्रह्म चैतन्यम इति भावः। वार्तिक कारणाम ईदृशी विवक्षा इति कुतो अवगम्यते इति आशंक्य। भाई वार्तिक कार्य है सुरेश्वराचार्य है, उनकी ऐसी विवक्षा है, ऐसा कहना चाहते हैं, तो ये कैसे ज्ञान हुआ आपको, आपको आपने जो कैसे निश्चय किया, क्या निश्चय, कि जो कूटस्थ ब्रह्म कहा उसको फल, तो चिदाभास को कूटस्थ ब्रह्म कहा, क्योंकि चिदाभास भी चेतन की तरह है, ऐसा निश्चय आपने कैसे किया? आगे लिखते हैं, श्लोक में आया था ब्रह्मतीत फलोजर भेद सहस्राम विश्रुत हो जाता, उसका अर्थ करते हैं। कहे तद गुरु भी ही श्रीमत आचार्य ही। श्रीमत आचार्य कौन हो गए? भगवान शंकराचार्य। वो किसके गुरु है? वार्तिककार के गुरु है ना। तो चेले की बात गुरु से भिन्न होगी? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, प्रमाण नहीं हो पाएगा। ये कह रहे तद गुरु भी ही, तद से क्या लेंगे? वार्तिककार। वार्तिककार के गुरु हो गए भगवान शंकराचार्य, वो श्रीमत आचार्य हो है ना। तो उनका ग्रंथ है उपदेश सहस्याम। उपदेश सहस्री नामक ग्रंथ में ये स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्म चैतन्य चिदाभासयोर भेदस्य प्रतिपादत्व। कि ब्रह्म चैतन्य अलग है, वो तो कुटस्थ हो गया, और चिदाभास तो भाई वृत्ति को लेकर चिदाभास है। तो कुटस्थ ब्रह्म आने वाला जाने वाला नहीं है, चिदाभास तो आने वाला जाने वाला है ना। ये तो स्पष्ट वहां पर प्रतिपादन किया गया है, भेद अलग अलग है वो है ना। तो श्लोक में आया ब्रह्मचित फलयोः भेदः, उसका समास बता रहे टीकाकार। ब्रह्म चित च फलम च, ब्रह्म चित फले समास हो गया, इसको कहते द्वंद समास है ना। हाँ ऐसा होता, जैसे गुरुश्च ईश्वरश्च, गुरु ईश्वर हो गए ना, रामश्च ईश्वरश्च, रामेश्वर हो गया। हाँ दंड भी होगा है ना, कहीं कर्मधर भी करते हैं, तो यहाँ पर हो गया दंड है ना, कर्मधर नहीं। ब्रह्मचित च फलम च, ब्रह्मचित फले, और जो है षष्ठी द्विवचन हो गया ब्रह्मचित फलयो हो, इसलिए तयोर इति विग्रह, ऐसा विग्रह किया। इसलिए वार्तिककार का और भारती तीर्थ महाराज ने जो कहा, दोनों में कोई विरोध हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए फल चैतन्य कौन हो गया? चिदाभास हो गया कि नहीं, और जो है कूटस्थ ब्रह्म उससे अलग। ये लक्षार्थ हो गया कूटस्थ ब्रह्म, और वाचार्थ हो गया कौन? चिदाभास। इसलिए चिदाभास को फल कहा जाता है, कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य को फल नहीं कहा जाता है। बस इतने में रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।